नमस्कार भारत, आज है 13 अप्रैल दिन शुक्रवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। उन्नाव रेप केस के अभियुक्त बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की गिरफ्तारी की खबर। कठुआ और उन्नाव रेप केस में न्याय दिलाने के लिए सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी ने इंडिया गेट पर किया कैंडल लाइट मार्च।
कभी बच्ची को कभी महिला को मारा जाता है, रेप किया जाता है और हम चाहते हैं कि सरकार इस मामले को रिजॉल्व करे।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव में लिंगायतों की अहमियत पर सुनिएगा एक खास रिपोर्ट।
वीर शैवा शैव का एक पंथ है, लिंगायत एक स्वतंत्र धर्म है, इसलिए ये दोनों मिलकर कार्य करना असाध्य है।
राष्ट्रमंडल खेलों के अपडेट के लिए चलेंगे रेहान फजल के पास, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक नाबालिग लड़की और जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार और उसके बाद उसकी बर्बर हत्या के विरोध में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीती रात 12 बजे दिल्ली के इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला। कुछ घंटे पहले बुलाई गई इस रैली में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हुए। लोगों ने मोदी विरोधी नारे लगाए और महिलाओं के लिए सुरक्षा के कड़े कदम उठाने की मांग की। सीरिया के डूमा में हुए केमिकल हमले के मुद्दे पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे से बात कर रहे हैं और इस हमले का क्या जवाब दिया जाए इस पर चर्चा कर रहे हैं। ब्रिटेन ने एक बयान जारी कर कहा है कि ट्रंप और ब्रितानी प्रधानमंत्री टेरिजा मे में इस बात की सहमति बन गई है कि केमिकल हमले का जवाब देना जरूरी है और वो इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया पर साथ मिलकर काम करेंगे। इधर व्हाइट हाउस का कहना है कि अब तक सीरिया में सैन्य कार्रवाई पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के लिए रूसी दूत वसीली नेबेंजिया ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका सीरिया पर हमला करता है तो इसके रूस और अमेरिका के बीच युद्ध की स्थिति बन सकती है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी संभावना से इनकार नहीं करते। संयुक्त राष्ट्र के कुछ स्थायी सदस्यों का इस तरह का आक्रामक रुख और उनकी तैयारी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा है जो कि संयुक्त राष्ट्र के ही चार्टर के खिलाफ है। जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, हम इसे लेकर काफी चिंतित हैं। हमें उम्मीद है कि हम कभी अपने फैसले के बारे में दोबारा सोच विचार कर सकेंगे और अमरीका और उसके मित्र देश सैन्य कार्रवाई से दूर रहेंगे। ये थे संयुक्त राष्ट्र के लिए रूसी दूत वसीली नेबेंजिया के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रासायनिक हथियारों पर नजर रखने वाले संगठन का कहना है कि ब्रिटिश सरकार की जांच में पता चल गया है कि पूर्व रूसी जासूस सर्गेई स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया स्क्रिपल पर हुए हमले में इस्तेमाल किए गए रसायन की पहचान कर ली गई है। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स ने अपनी रिपोर्ट में नोविचोक नर्व एजेंट का नाम नहीं लिया है, लेकिन कहा है कि वो ब्रिटेन की जाँच के नतीजे से सहमत हैं। ब्रिटेन ने जांच रिपोर्ट के सिलसिले में बात करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के लिए गुजारिश की है। संयुक्त राष्ट्र के लिए ब्रिटेन के दूत कैरन पियर्स ने कहा, ब्रिटेन ने ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के डायरेक्टर जनरल से आगामी बुधवार को एक खास बैठक बुलाने के लिए कहा है और यहाँ न्यूयॉर्क में हैं हम, जहाँ हमने अगले सप्ताह सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने के लिए भी कहा है। संभव है कि ये बैठक अगले सप्ताह बुधवार दोपहर तक हो। संयुक्त राष्ट्र के लिए ब्रिटेन के दूत कैरन पियर्स के शब्द। हंगरी की सत्तारूढ़ पार्टी के करीबी माने जाने वाले एक साप्ताहिक अखबार ने 200 लोगों के नाम छापे हैं जिन्हें अखबार ने हंगरी में जन्मे समाजसेवी जॉर्ज सोरोस का सहयोगी कहा है। इस लिस्ट में कई अकादमिक व्यक्ति, समाज सेवा से जुड़े लोग और कानून के जानकार शामिल हैं। केंद्रीय यूरोपीय विश्वविद्यालय के रेक्टर माइकल इग्नाटियस ने कहा है कि ये लोगों को डराने के लिए उठाया गया कदम है। सोरोस हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन के कट्टर आलोचक रहे हैं। इराक में शरकत में कथित चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से लड़ते हुए शहीद हुए जवानों की शव यात्रा में हुए बम धमाके में 16 लोगों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी है और आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com, मोबाइल और फेसबुक पर लाइव और मैं हूं अमरीश द्विवेदी। ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्नाव रेप केस के अभियुक्त बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। कल एसआईटी की रिपोर्ट के बाद सेंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीधे चलते हैं लखनऊ अपने सहयोगी समीर आत्मज मिश्र के पास। समीर, क्या जानकारी है आपके पास?
जी अमरीश, ये ऐसा खबरों में कहा जा रहा है कि सीबीआई ने उनको बिल्कुल सुबह, अब से समझ लीजिए कि कुछ देर पहले, हिरासत में लिया है और उनको पूछताछ के लिए ले गई है। हालांकि सीबीआई ने अभी इसकी पुष्टि सीबीआई से नहीं हो पाई है और लखनऊ पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनके कुछ अधिकारियों से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि इसके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि अभी पूछताछ के लिए लखनऊ से सीबीआई ने कुलदीप सेंगर को हिरासत में लिया है, अभी उनसे पूछताछ करेगी। हालांकि कल ही जब इनके खिलाफ उन्नाव के ओमाठी थाने में केस दर्ज हुआ था और तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन डीजीपी ने जब कहा था कि अब मामला पूरा सीबीआई को सौंप दिया गया है तो इनकी गिरफ्तारी होना है, होनी है या नहीं होनी है, ये सारा फैसला सीबीआई को ही करना है। तो सीबीआई ने अभी उनको हिरासत में लिया है जैसा कि बताया जा रहा है, अभी पूछताछ करेगी, उसके बाद उनको आगे क्या करना है, गिरफ्तार करके जेल भेजना है, कोर्ट के सामने ले जाना है, ये तय करने का काम सीबीआई का ही है।
जी, आप नज़र बनाए रखिए, ये गिरफ्तारी है या उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं है, आप नज़र बनाए रखिए, जैसे ही जानकारी पुष्ट होती है हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। आपको बता दें कि 17 साल की एक पीड़ित युवती ने बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर और उनके भाइयों पर आरोप लगाया है कि पिछले साल जून में उन्होंने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया था। युवती ने न्याय पाने की पूरी कोशिश की लेकिन अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। तंग आकर युवती ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री के आवास के बाहर आत्महत्या करने की कोशिश भी की, लेकिन अब मामले के तूल पकड़ने के बाद सीबीआई को मामला सौंप दिया गया है, जांच जारी है। उधर कठुआ और उन्नाव जैसी घटनाएं ना हों और दोषियों को सजा मिले, यही मांग लेकर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता कल मध्यरात्रि में इंडिया गेट पर जुटे। ये सभी लोग कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्विटर पर जारी अपील पर थोड़े ही समय में जमा हुए थे और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल लाइट मार्च किया। उसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में महिलाओं के भीतर एक डर का माहौल है और वो चाहते हैं कि सरकार ऐसे कदम उठाए कि महिलाएं और बच्चियां बेखौफ होकर घर से बाहर निकल सकें। हमारी सहयोगी भूमिका राय राहुल गांधी के उस मार्च को कवर करने देर रात इंडिया गेट पहुंची थी, सुनिए उनकी रिपोर्ट।
12 अप्रैल की आधी रात, जगह दिल्ली का इंडिया गेट। यहाँ सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता एकत्र हुए और कैंडल मार्च निकालकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि जम्मू के कठुआ और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बलात्कार के मामले में सरकार दोषियों को सजा दे। उनका सवाल था कि बेटी बचाओ का मोदी सरकार का नारा कहाँ है। ये लोग कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्विटर पर किए आह्वान के बाद जमा हुए थे। राहुल का साथ देने उनकी बहन प्रियंका और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा समेत कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, गुलाम नबी आजाद, अजय माकन समेत कांग्रेस के कई अन्य नेता भी शामिल थे। राहुल गांधी ने कहा,
जहाँ भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं कभी बच्ची को कभी महिला को मारा जाता है, रेप किया जाता है, और हम चाहते हैं कि सरकार इस मामले को रिजॉल्व करे, हिंदुस्तान की महिला शांति से सड़क पे उतर पाए, अपनी जिंदगी शांति से जी।
इस मार्च में काफी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। कैंडल मार्च में शामिल लोगों में उन्नाव में नाबालिग युवती के साथ बीजेपी विधायक के कथित बलात्कार और जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची के बलात्कार के बाद निर्मम हत्या को लेकर रोष था। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेता चौधरी मतीन अहमद ने कहा,
जो बेटी बचाने की बात कर रहे थे वो तो विधायक बचा रहे, बेटी कहाँ बचा रहे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। योगी जी और मोदी जी मिलकर दोनों अपने लोगों को बचा रहे।
राज्यसभा सांसद आनंद भास्कर राव पोलू ने कहा,
ये अभी बस हो गया, बेटियों का बचाना बात नहीं है और बेटियों को खाने का, बेटियों का पूरा जिंदगी बर्बाद करने का हाल चल रहा है। इसके लिए बेटियों का रक्षा के लिए, महिलाओं का रक्षा के लिए कांग्रेस इकट्ठा हो रहा है बोल के हम दिखाने के लिए आज की ये प्रदर्शना कर रहे हैं। हम
मार्च में शामिल लोग हाथों में बैनर लिए हुए थे और सरकार विरोधी और मोदी विरोधी नारे लगा रहे थे। इसमें शामिल महिलाओं का आरोप था कि केंद्र की मोदी सरकार महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। एक प्रदर्शनकारी ऋतु चौहान कहती हैं,
देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और हम ये कहना चाहते हैं मोदी जी, बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं, 56 इंच का सीना आपका है, अगर वो सीना कहाँ गया? देश का चौकीदार अगर इस तरीके का होगा तो देश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा क्या होगी? आज मोदी जी सिर्फ बात करते हैं तो सिर्फ ये कि भाइयों अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए हैं तो योगी जी के आए हैं, मोदी जी के आए हैं, बहने आज सुरक्षित नहीं है।
चूँकि इस कार्यक्रम की योजना पहले से नहीं थी इसलिए पुलिस को तैयारी के लिए कम वक्त मिला। हालांकि जल्दबाजी में ही सही लेकिन सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। एक पुलिस अधिकारी ने हमें बताया कि थोड़े समय में ही इंडिया गेट के आसपास कम से कम 300 पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था के काम पर लगा दिया गया था। राहुल गांधी का ये कैंडल मार्च सफल कहा जा सकता है और वो इसके जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट कर राष्ट्रीय स्तर पर एक गंभीर संदेश देने में भी सफल हुए। अब नजर इस बात पर रहेगी कि कठुआ और उन्नाव के मुद्दे पर राहुल गांधी के उठाए सवालों का मोदी सरकार और बीजेपी क्या और कैसे जवाब देती है। भूमिका राय, BBC नई दिल्ली।
पुलिस के दम पे गुंडागर्दी।
वहीं भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में 8 साल की बच्ची आसिफा बानो के बलात्कार और हत्या का मामला अब जम्मू बनाम कश्मीर की शक्ल अख्तियार कर रहा है। जहां एक तरफ जम्मू से मामले की CBI जांच की मांग हो रही है, वहीं कश्मीर घाटी से आसिफा को इंसाफ देने की मांग भी बढ़ती जा रही है। सुनिए माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
8 वर्षीय आसिफा बानो की हत्या और बलात्कार के मामले को लेकर कश्मीर में आसिफा के इंसाफ के लिए लगातार आवाजें आ रही हैं। छात्रों से लेकर व्यापारियों तक और अलगावादियों से लेकर आम लोगों तक सभी आसिफा के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कश्मीर के अलगावादी नेता यासीन मलिक ने बुधवार को आसिफा के समर्थन में एक प्रदर्शन रैली निकाली थी, जिस दौरान उन्होंने मीडिया को बताया कि जम्मू में कुछ सियासी नेताओं और वकीलों ने जो रोल निभाया वो एक अपराधी का रोल है। यासीन मलिक, उधर जम्मू में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू शाखा ने बुधवार को जम्मू बंद बुलाया था, जिसके कारण बुधवार को जम्मू बंद रहा। गुरुवार को जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू बार ने CBI जांच की मांग को दोहराते हुए बताया कि इस मामले को सांप्रदायिक मामला बनाने की कोशिश की जा रही है। बार के अध्यक्ष SM सलाथिया,
जम्मू के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को एक ऐसी प्रोजेक्शन दी जा रही है, ये कम्युनल माइंडसेट से लड़ाई लड़ी जा रही है।
जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मांग कर रही है कि इस मामले में CBI की जांच हो। इस मामले में राज्य की क्राइम ब्रांच ने 10 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट दाखिल करते समय कुछ वकीलों ने अदालत के बाहर क्राइम ब्रांच को चार्जशीट दाखिल करने से रोक दिया था और नारेबाजी की थी। इस मामले की जांच राज्य की क्राइम ब्रांच कर रही है और अभी तक 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। जब क्राइम ब्रांच ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी अमल में लाई थी तो उस समय हिंदू एकता मंच ने अभियुक्त के समर्थन में कुठवा में रैली निकाली थी और रैली के दौरान हाथों में राष्ट्रीय तिरंगा लहराए थे। उस समय उस रैली में BJP के कुछ नेता भी शामिल हो गए थे। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
इसी मसले पर हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने वरिष्ठ पत्रकार राहुल पंडिता से बात की और पूछा कि रेप और हत्या जैसे इस जघन्य आपराधिक कृत्य में लोगों की संवेदना बंटी हुई क्यों नजर आ रही है।
देखिए, जहां भी बलात्कार या हत्या के मामले होते हैं वो हमेशा दुखद होते हैं और वो त्रासदी से भरे होते हैं, लेकिन इस मामले में सच्चाई ये है कि ये लड़की बहुत छोटी थी और इसमें सबसे बड़ी दुखद घटना जो ये है कि इसमें जब गिरफ्तारियां हुई और चार्जशीट फाइल हुई, जिस तरह से जम्मू में समाज के एक तबके ने बाहर आकर जो एलिजिड इसके जो परपेट्रेटर्स हैं, एक्यूज हैं, उनके समर्थन में जिस तरह वो बाहर निकले और उन्होंने राष्ट्रीय तिरंगे का इस्तेमाल किया और रिलीजियस नारे लगाए, वो बहुत ही दुखद घटना है। उसमें एक घटना जो पाकिस्तान में हुई थी, सलमान तासीर जो वहां के थे और उनकी जब हत्या हुई थी और उनकी हत्यारे के जो समर्थन में जिस तरह की भीड़ जुटी, उस तरह की भीड़ तो यहाँ नहीं जुटी थी लेकिन संकेत उसी तरह के मिल रहे थे, तो इसलिए ये घटना बहुत दुखद है। दूसरा, मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि जम्मू रीजन में, प्रोविंस में कुछ इश्यूज हैं, वो बहुत जेन्युइन इश्यूज हैं, जैसे डेमोग्राफिक चेंजेस को लेकर इश्यूज हैं। रोहिंग्या की जो सेटलमेंट है पिछले कुछ सालों से हुई वो जेन्युइन है। रोहिंग्या की सेटलमेंट में किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर राज्य अपने आप में बहुत संवेदनशील है तो ऐसे में ये सवाल खड़े होते हैं कि वहां पर रोहिंग्या की सेटलमेंट करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो इस तरह तनाव वहाँ ऑलरेडी बना हुआ था, लेकिन उस तनाव को इस नृशंस हत्या और बलात्कार के साथ कॉन्फ्लिक्ट करना, उसकी बराबरी करना, ये बहुत दुखद है। इन दोनों को अलग करके देखना चाहिए। और ये जो बलात्कार है और हत्या है, इसका कोई भी जस्टिफिकेशन, किसी भी तरह का जस्टिफिकेशन, चाहे वो डेमोग्राफिक फेयर हो आपके या चाहे और भी किसी तरह के फेयर हो, कोई भी चीज इसको जस्टिफिकेशन नहीं कर सकती। इसीलिए ये जो मामला है और मामलों से थोड़ा सा अलग हो जाता है।
मतलब इस तरीके से लोगों के बीच मतभेद, मनभेद और नफरत है कि लोग रेप का समर्थन आकर सड़क पर कर रहे हैं।
बहुत ही दुखद घटना है और आपका कहना सही है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि एक सेंसिबिलिटी है, एक सेंसिटिविटी इन मामलों को लेकर जो इस देश में होती थी वो कहीं ना कहीं सिकुड़ती नजर आ रही है। उसका जो फाइबर है वो कहीं ना कहीं खराब होता नजर आ रहा है। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। और इससे भी चिंताजनक बात यह है कि ऐसी चीजों के जस्टिफिकेशन के लिए जब राष्ट्रीयता का सहारा लिया जाता है, जब नेशनल फ्लैग का सहारा लिया जाता है या एक तरह के रिलीजियस स्लोगन्स का सहारा लिया जाता है, चाहे वो कश्मीर घाटी हो या चाहे वो जम्मू प्रांत हो, तो ये बहुत ही एक डेंजरस कंकॉक्शन है। और इतिहास में, डेकेड्स में, दशकों से इस तरह की कई एग्जांपल्स हैं हमारे पास।
इसमें क्या ये भी आप देख रहे हैं कि जम्मू बनाम घाटी जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है?
देखिए, कोशिश तो मैं ये नहीं कह सकता कि की जा रही है, लेकिन हो ही रहा है। ये मामला जम्मू बनाम घाटी में ऑलरेडी तब्दील हो चुका है। हालांकि हमको ये साफ कर देना चाहिए, ये लड़की जो है ये कश्मीरी लड़की नहीं है, ये गुजर बकरवाल समुदाय से है और गुजर बकरवाल समुदाय शेड्यूल ट्राइब्स हैं और इनका एक इतिहास रहा है, ये हमेशा प्रो इंडिया रहे हैं और एंटी मिलिटेंसी रहे हैं।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार राहुल पंडिता। हाल ही में बिहार में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कई घटनाओं को अंजाम दिया गया। इन घटनाओं को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना हुई कि उन्होंने निपटने में सख्ती नहीं दिखाई। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी एनडीए में फ्रंट फुट पर खेलते थे, लेकिन महागठबंधन छोड़ दोबारा एनडीए में आने के बाद उनकी राजनीतिक हैसियत कमजोर हुई है। कई लोगों का मानना है कि नीतीश सुविधा के हिसाब से सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाते हैं। सुनिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट।
एनडीए यानी बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में नीतीश कुमार की उस हैसियत को लोग अब भी याद करते हैं जब नरेंद्र मोदी को बिहार में चुनाव प्रचार करने नहीं आने दिया जाता था। अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की जो हैसियत अटल आडवाणी के नेतृत्व वाले एनडीए में थी, वो शाह और मोदी के एनडीए में नहीं है। पिछले महीने बिहार में सांप्रदायिक तनाव की कई घटनाएं घटी तो नीतीश कुमार पर गंभीर सवाल उठे। जेडीयू में कई अहम पदों पर रह चुके शिवानंद तिवारी मानते हैं कि नीतीश कुमार अब साख के संकट से जूझ रहे हैं।
देखिए, नीतीश कुमार के भूमिका के बारे में संदेह कहाँ है। इस बार जो महागठबंधन छोड़ने के बाद जो जनादेश उनको मिला था, उस जनादेश को धोखा देकर वो जो है फिर उन्हीं ताकतों के साथ उन्होंने गठबंधन बनाया जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़े थे और जिनके बारे में वो उन्होंने आरोप लगाया था कि ये लोग सांप्रदायिकता के आधार पर ध्रुवीकरण करते हैं, समाज को बांट के राजनीति करते हैं, और उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ा और फिर वहीं चले गए।
नीतीश कुमार ने धर्मनिरपेक्षता को लेकर बीजेपी से 17 साल पुराना संबंध जून 2013 में खत्म कर लिया था। इसके बाद उन्होंने 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने चिर प्रतिद्वंदी लालू यादव के साथ गठबंधन कर लिया। 2017 में वो राष्ट्रीय जनता दल से भ्रष्टाचार के सवाल पर अलग हो गए और फिर से बीजेपी के साथ आ गए। अगर नीतीश कुमार को आरजेडी का साथ भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण रास नहीं आता है तो बीजेपी का साथ सांप्रदायिकता के कारण, तो आखिर वो दोनों का साथ क्यों नहीं खारिज कर देते? जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन कहते हैं
कि नीतीश कुमार जी के शासन के 12 वर्षों में ऐसे सवाल कई बार खड़े हुए। जब शहाबुद्दीन को लेकर के ये कहा जाता था कि वो गठबंधन में शामिल है शहाबुद्दीन, तो कठिनाई होगी उनको, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हुई। और राजबल्लभ यादव, रॉकी यादव, आप हाल के दिनों में देखें दो पत्रकारों की हत्या को लेकर के घटना के तुरंत बाद ये कहा गया कि कुछ भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, लेकिन 2 घंटे के अंदर वहाँ भी गिरफ्तारी हो गई।
नीतीश कुमार पर आरोप लग रहा है कि सांप्रदायिक तनाव फैलाने के मामले में उन्हें जितना कड़ा रुख अपनाना चाहिए था नहीं अपनाया। कई राजनीतिक विश्लेषक पूछ रहे हैं कि नीतीश को एक साथ भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता से दिक्कत क्यों नहीं होती। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी कहते हैं,
अगर इनका इकबाल और साख होता तो अब आप बताइए कि दो जगह का तो मतलब करोड़ों लोगों ने देखा कि अश्वनी चौबे का बेटा इनको थ्रेट कर रहा है, सोनी चौबे थ्रेट कर रहे हैं। फिर दरभंगा की घटना के बारे में सरकार का स्टैंड कुछ है, डीजीपी का स्टैंड कुछ है, और गिरिराज सिंह का वायरल हुआ वीडियो और उसमें गिरिराज सिंह कह रहा है कि डीएसपी के खिलाफ नारा लगाओ, डीएसपी के खिलाफ नारा लगाओ। तो जब सरकार का इकबाल और साख खत्म हो जाता है तब चाक के भी जो है वो कठोर कदम नहीं उठा पाता है।
महागठबंधन छोड़ने के बाद नीतीश कुमार का एनडीए में दोबारा आना एक बड़ी राजनीतिक परिघटना थी, पर बिहार में लोग नीतीश का प्रभाव एनडीए में कम होने के कई उदाहरण देते हैं। इनमें से एक सार्वजनिक उदाहरण है नीतीश कुमार के खुले अनुरोध के बावजूद पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया जाना। नीतीश कुमार ने इसकी मांग पिछले साल 14 अक्टूबर को मंच से की थी, लेकिन निराशा हाथ लगी थी। रजनीश कुमार, बीबीसी दिल्ली।
21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 14 स्वर्ण पदकों के साथ अब तक 29 पदक जीत लिए हैं। कल सुशील कुमार और राहुल अवारे ने कुश्ती में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते। और अब सीधे चलते हैं गोल्ड कोस्ट अपने वरिष्ठ सहयोगी रेहान फजल के पास। रेहान, राष्ट्रमंडल खेल अब समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, आज किन खेलों और पदकों पर नजर रहेगी और क्या भारत 2014 के 64 पदकों की बराबरी कर पाएगा?
देखिए अमरीश, अभी पहले आपको बता दें ताज़ा खबर, 65 किलोग्राम कुश्ती में बजरंग ने न्यूजीलैंड के रिचर्ड ब्राम को 10-0 से हरा दिया है और एक तरह से अगले राउंड में प्रवेश किया है। और आज कुश्ती में 4 भारतीय पहलवान उतरे हैं, बजरंग का नाम मैंने ले लिया, मौसम खत्री 97 किलोग्राम में, महिलाओं के 57 किलो में पूजा ठंडा और 68 किलो में दिव्या काकरान भारत की तरफ से लड़ रही हैं। बॉक्सिंग में आज 8 वर्गों में भारतीय मुक्केबाज अपने सेमीफाइनल मैच खेलेंगे। सेमीफाइनल में पहुंचने का मतलब होता है कि पदक पक्का हो चुका है उनका कांस्य पदक, अब वो उस कांस्य पदक को रजत में बदलने के लिए आज उतरेंगे। और ये 8 बॉक्सर हैं, अमित गौरव सोलंकी, मनीष कौशिक, मनोज कुमार, हसनुद्दीन मोहम्मद, विकास कृष्ण, सतीश कुमार और नमन तंवर। और बॉक्सिंग की एक बात और आपको बता दें कि मैरी कॉम पहले ही फाइनल में पहुंच गई हैं 45 किलोग्राम में, कल उनका मुकाबला होगा फाइनल। शूटिंग में 3 स्वर्ण पदकों का फैसला होगा, महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, जहां अंजुम मोतकिल और तेजस्विनी सावंत भारत की तरफ से हैं। पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल जिसमें अनीश और नीरज कुमार हैं, और महिलाओं की ट्रैप प्रतियोगिता जिसमें सीमा तोमर और श्रेयसी सिंह भारत की तरफ से लड़ रही हैं। एक और महत्वपूर्ण मुकाबला है हॉकी में, सेमीफाइनल मुकाबला है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेहान फजल गोल्ड कोस्ट से, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक में 12 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं और वहां लिंगायतों का मुद्दा काफी गर्म हो चुका है। प्रदेश की सिद्धरमैया सरकार ने लिंगायतों को हिंदू धर्म से अलग कर नई पहचान देने की सिफारिश केंद्र सरकार के पास की है। मुख्यमंत्री के इस कदम से प्रदेश बीजेपी भी पसोपेश में है। सुनिए सलमान रावी की एक खास रिपोर्ट।
कर्नाटक के शिवमोगा से 40 किलोमीटर दूर होसनगारा डैम के पास लिंगायत समुदाय के लोग जमा होकर प्रार्थना कर रहे हैं। कर्नाटक में अगले महीने होने वाले विधानसभा के चुनावों से ठीक पहले ये बहस छिड़ गई है कि लिंगायत हिंदू हैं या नहीं, जबकि वो शिव के उपासक हैं। ये एक ऐसी बहस है जिसको लेकर कर्नाटक में पहले ही काफी खून खराबा हो चुका है। 2 तरह के लिंगायत हैं, वीरे शैवा और लिंगायत, मगर लिंगायत मठाधीशों का कहना है कि दोनों अलग अलग हैं। लिंगायतों की जगत गुरु माते महादेवी कहती हैं,
नहीं, वीर शैवा अलग है, लिंगायत और वीर शैवा अलग है। वीर शैवा शैव का एक पंथ है, लिंगायत एक स्वतंत्र धर्म है, इसलिए ये दोनों मिलकर कार्य करना असाध्य है, इसलिए हम लड़ रहे हैं।
लिंगायतों का मानना है कि उनकी पूजा की पद्धति हिंदुओं से बिल्कुल अलग है, वो निराकार शिव की आराधना करते हैं। लिंगायतों के मठों में से एक मठ के मठाधीश शिव मूर्ति मुरुघा शरणारू कहते हैं,
भगवान निराकार, भगवान निराकार रूपी भगवान को हमें पूजा करते हैं, पूजा करते करते साक्षात निराकार शिव ही हो सकते हैं।
तो लेकिन हिंदुइज्म में आकार है, मूर्तियां हैं, बहुत सारी मूर्तियां हैं, अलग अलग भगवानों की अलग अलग मूर्तियां हैं, दूसरे देवी देवता।
इधर मूर्ति पूजा नहीं है, निराकार पूजा है, लिंगांग सामरस्य का पूजा है, लिंगांग पूजा है, शिवयोग कहलाते हैं। और हथेली में इष्टलिंग को रख कर ऐसे ध्यान करते हैं।
इसी प्रार्थना सभा के दौरान मेरी मुलाकात सिद्धा बसावा कबीरा स्वामी जी गालू से हुई, जो पहले मुसलमान थे और उनका नाम था टीपू सुल्तान।
मैं पहला मेरा नाम इस्लाम धर्म से टीपू सुल्तान था। मुझे थोड़ा से बसव तत्व के बारे में पहचानना जरूर था, इसलिए मुझे उसकी तलाश में मैं घूम रहा था, फिर रहा था। तो एक मेरे नज़र में एक आध्यात्मिक स्वामी जी मिले, वही जो चित्रगुरु के महान स्वामी जी है। मुझे जैसे कि 12वीं शताब्दी में नरोलशंकर देवर ने अपना धर्म त्याग कर लिंगायत धर्म स्वीकार किया, इसलिए मैंने भी उसी रास्ते पर चलकर स्वामी जी से दीक्षा लिया।
वहीं वीरे शैवा लिंगायत भी हैं, जो शिव की मूर्ति की पूजा भी करते हैं और लिंग धारण भी करते हैं। वीरे शैवा पंथ की शुरुआत जगत गुरु रेणुकाचार्य ने की थी और 5 पीठों की स्थापना भी की थी, वैसे ही जैसे आदि शंकराचार्य ने की। इन 5 पीठों में से सबसे महत्वपूर्ण पीठ है चिकमगलूर का रंभापुरी पीठ। रंभापुरी पीठ के मठाधीश जगत गुरु वीरा सोमेश्वराचार्य ने BBC से बात करते हुए कहा,
वीर शैवने आगिरली अथवा लिंगायतवे आगिरली इवेरडू कूड़ा हिंदू धर्मक संबंध।
स्वामी सोमेश्वराचार्य कह रहे थे कि जिस तरह वीर शैवा ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, वैसे ही लिंगायत भी करते हैं। लिंगायत भी वीर शैवा पंथ का हिस्सा है। स्वामी सोमेश्वराचार्य का कहना था कि मठ धर्म का स्थान है, जहां सिर्फ धर्म की बात होती है और प्रचार होता है, यहां किसी राजनीतिक दल या नेता का प्रचार नहीं होता। वहीं रंभापुरी मठ के संयोजक रवि आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहते हैं,
विश्व गुरु बसवण कैसा होता है? जगत गुरु रेणुकाचार्य पहले के अब बसवण के विरुद्ध नहीं, हमारा जात को आया, वीरेश्वर धर्म को आया हो, हमारा धर्म का प्रचार करे है। अभी बसवण के विरोधी नहीं ही, कभी भी नहीं बसवण के विरोधी नहीं, कभी बसवण का पूजा करते हैं। मैं भी बसवण विश्व गुरु नहीं, रेणुकाचार्य विश्व गुरु है। अभी क्या हुआ है, सिद्धरामय्या MB पाटिल ये इलेक्शन का बोल को ये डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करे तो हमारा वोट मिलता है। वीरशिव लिंगायत, वीरशिव दूसरा नहीं, लिंगायत दूसरा नहीं, एक ही है। हमें मूर्ति पूजा करते हैं,
वो नहीं करते। लिंगायत पीठाधीशों के संयोजक SM जमादार पहले उप मुख्य सचिव रह चुके हैं। वो कहते हैं कि ये द्वंद हमेशा रहा है कि लिंगायत वीर शैवा हैं, मगर ऐसा नहीं है।
शून्य 224
सीटों वाली कर्नाटक की विधानसभा में लगभग 100 ऐसी सीटें हैं जिन पर लिंगायतों का प्रभाव है। विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने लिंगायत को अलग धर्म के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव अपने मंत्रिमंडल से पारित करवाकर गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है। सियासी हलकों में इस फैसले को शतरंज की शय और मात वाली चाल के रूप में ही देखा जा रहा है। सलमान रावी, BBC, चिकमगलोर, कर्नाटक।
और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक नाबालिग लड़की और जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार और उसके बाद उसकी बर्बर हत्या के विरोध में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीती रात 12 बजे दिल्ली के इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला। सीरिया के डूमा में हुए केमिकल हमले के मुद्दे पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे से बात कर रहे हैं और इस हमले का क्या जवाब दिया जाए इस पर चर्चा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रासायनिक हथियारों पर नजर रखने वाले संगठन का कहना है कि ब्रिटिश सरकार की जाँच में पूर्व रूसी जासूस सर्गेई स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया पर हुए हमले में इस्तेमाल किए गए रसायन की पहचान कर ली गई है। हंगरी की सत्तारूढ़ पार्टी की करीबी माने जाने वाले एक साप्ताहिक अखबार ने 200 लोगों के नाम छापे हैं जिन्हें अखबार ने हंगरी में जन्मे समाजसेवी जॉर्ज सोरोस का सहयोगी बताया है। BBC समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार, भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम के दौरान तकनीकी सहयोग दिया अजित सारथी ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुँचाया गुरप्रीत कौर ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।